जो विकास नीतियां हैं उसमें असमानताएं हैं। जब हम विकास नीति की बात कर रहे हैं, खास तौर पर SDG 7 की बात कर रहे हैं, जो किफ़ायती और साफ ऊर्जा की बात करता है, उसको सुनिश्चित करने की बात करता है, तो वो कौन सी असमानताएं देखते हैं, खास तौर पर हम क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में?
दुनिया में 1 बिलियन लोग, 100 करोड़ जैसे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और कुछ 200 करोड़ लोगों के पास स्वच्छ ईंधन नहीं है खाना पकाने के लिए। और कुछ सालों पहले तक भारत में इनकी आबादी सबसे ज़्यादा थी। पिछले 10 सालों में भारत ने काफ़ी प्रगति किया है दोनों इश्यूज पे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस पे कुछ 350 मिलियन 35 करोड़ जैसे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर मिला है। अब 99% घरों में इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रहा है, और कुछ 70 करोड़ लोग, 700 मिलियन लोगों के पास स्वच्छ ईंधन आया है। लेकिन असमानता रह जाता है, इसके काफ़ी कारण हैं। एक तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी का एक तार आपके घर में आने का कोई गारंटी नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आए, कितने घंटों के लिए आए, किस वोल्टेज पे आए और किस प्राइस पे आए जो आप अफोर्ड कर सकें। तो इसीलिए हमें कनेक्शंस के बियॉन्ड देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इनइक्वालिटी है। और जब हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं, ज़्यादा गरीब प्रांतों में देखते हैं, वहाँ ये अफोर्डेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है या रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई का जो प्रॉब्लम है वो रह जाता है। स्वच्छ ईंधन में भी चैलेंज रह जाता है, जैसे हर महीने LPG सिलेंडर को भरने के लिए पैसा है कि नहीं, ग्रामीण इलाकों में LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप है कि नहीं, दुकान है कि नहीं। तो ये अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का फिर से एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर एक जेंडर इनइक्वालिटी का भी बात आ जाता है। घर के स्त्रियों को ये डिसीशन पावर ना रहे कि हर महीने LPG सिलेंडर भरने का और उस पर खर्च करने का, और वो सिर्फ डिसीशन पावर मर्दों के पास रहे, तो हम देखते हैं कि उससे भी ये असमानता रह जाती है। औरतों को गंदे ईंधन से खाना पकाना पड़ता है, जो इंडोर एयर क्वालिटी का भी एक गंभीर असर पड़ता है उस पर। ये जो असमानताएँ हैं वो कनेक्शंस के बियॉन्ड जा रहे हैं, वो जेंडर पे बेस्ड है, अफोर्डेबिलिटी पे बेस्ड है, रिलायबिलिटी पे बेस्ड है। और जब तक हम ये जैसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल रूप से ये एनर्जी एक्सेस के लिए हम ना काम करें, ये असमानताएं रह जाएंगी।
मल्टी डायमेंशनल एक्सेस की बात होती है तो SDG का जो पूरे 17 लक्ष्यों का जो एजेंडा है उसमें मल्टी डायमेंशनल ही एक कार्रवाई करने की प्रयास चल रहा है। SDG 7 के मामले में जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं, बहुआयामी, किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? सस्टेनेबल फाइनेंस, टिकाऊ वित्तीय संसाधन मुहैया हो पाए, ये एक मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा और क्या, किन खास बातों का ख्याल रखा जाना जरूरी है?
एक तो हम जिस हिसाब से हम एनेक्सिस का मेजरमेंट करते हैं, ये जो बहुआयामी जो मैट्रिक्स हैं उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके ऊपर है एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, और इन दोनों पर निर्भर करते हुए बिजनेस मॉडल्स। इन तीनों अप्रोचेस से एक हम ये असमानता घटा सकते हैं। आप एक्सेस टू फाइनेंस ले लीजिए। आज के दिन में भारत में या मेक्सिको में, फिलीपींस में, जो रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा हो या वायु ऊर्जा हो, इनके जो प्राइसेस हैं वो दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे कम की तरफ जा रहे हैं, 2.5 रुपये भारत में, मेक्सिको में उससे भी कम। इससे क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी क्लीन एनर्जी के लिए बढ़ जाता है, लेकिन उसी कम टैरिफ में 50%, 60%, कहीं कहीं 70% तक का जो टैरिफ है वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का है। वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जब तक हम घटा नहीं रखते हैं, वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहेगा। और वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इन्हीं देशों में, इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर जब आते हैं, उनको लगता है यहाँ बहुत रिस्की है इन्वेस्टमेंट करना, और ये जो रिस्क परसेप्शन है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को बढ़ा देता है। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करने पड़ेंगे, अलग अलग देशों के प्रोजेक्ट्स को, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स को, ताकि उनका एक रिस्क प्रोफाइल जो है वो थोड़ा कम हो जाए और फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस घटे। सिमिलरली जो टेक्नोलॉजीज हैं, आज के दिन में काफ़ी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे LED लाइट बल्ब हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, एफिशिएंट मोटर्स हो गए, ये टेक्नोलॉजीज रेडी टू डिप्लॉय हैं, लेकिन ये एट स्केल डिप्लॉय नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम उनको ऐसे डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं जैसे कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इलाकों में ठीक से काम किया जा सके। एफिशिएंट मोटर्स आप बड़े से एक फैक्ट्री में भी लगा सकते हैं, आप छोटे से ग्रामीण औद्योगिक सेंटर में भी लगा सकते हैं. आपको ये टेक्नोलॉजीज को अडैप्ट करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्री कॉन्टेक्स्ट के लिए. एंड फाइनली बिजनेस मॉडल्स आ जाते हैं. जिस घर के पास कोई कोलैटरल नहीं है, लैंड नहीं है, वो किस हिसाब से बड़ा सा लोन लेगा कोई नया ऊर्जा टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करने के लिए. लेकिन अगर आप उसी टेक्नोलॉजी को आप यूटिलिटी कंपनी के बैलेंस शीट पर डाल दें और उस बैलेंस शीट के ऑन बिल फाइनेंसिंग से एक गरीब स्लम में सौर ऊर्जा पहुंचाएं, तो वो टेक्नोलॉजी भी एक्सेस हो जाता है, एनर्जी भी एक्सेस हो जाता है, लेकिन फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कम रह जाता है. तो ये इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स चाहिए होंगे.
तो जो सॉल्यूशन निकालना है उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनीतिक नेतृत्व है, उसकी भी खास तौर पे अहम भूमिका रहती है. इस तरह की पॉलिसीज के लिए, नीतियों के लिए पॉलिटिकल स्फेयर में उसको इंसेंटिवाइज करना, उसमें किस तरह से संतुलन साधा जा सकता है.
SDGs का एक विजन है कि 2030 तक हमारे पास सबके पास क्लीन एनर्जी एक्सेस हो, पानी और सैनिटेशन हो, जेंडर इनइक्वालिटी कम हो. तो जहां लाभ नहीं भी है वहां पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहता ही है. अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या राजनीतिक लाभ हो सकता है? आप आज अगर आप ये देखें कि बहुत सारे गरीब देशों में SDG 7 के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर उन्हीं देशों में इनोवेशंस भी हों ये फाइनेंशियल इश्यूज पे, बिजनेस मॉडल्स पे, तो एक इंटरनेशनल सॉफ्ट पावर बढ़ जाता है उनका कि इतने गरीब देश में डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी का इतना बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो गया. बांग्लादेश में कुछ 15 मिलियन घरों में डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है. केनिया में मोबाइल पेमेंट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी के लिए पेमेंट्स हो रहा है. भारत में कुसुम स्कीम है जहाँ लाखों सोलर इरिगेशन पंप्स लगाए जाएंगे. ऑलरेडी भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया में सोलर इरिगेशन पंप्स चल रहे हैं. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को चला रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी से. तो ये सब जो इनोवेशंस हो रहे हैं ये ग्लोबल साउथ में हो रहे हैं, तो उसका भी एक इंटरनेशनल एक राजनीतिक लाभ रहता है. उसके ऊपर एक और डायमेंशन है कि हम ये जो इंडिविजुअल सक्सेसेस हैं उनको हम एक साथ एग्रीगेट कैसे करें. और जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया जो पेरिस क्लाइमेट नेगोशिएशंस के पहले दिन अनाउंस हुआ था, आज वो दुनिया का सबसे लेटेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, कुछ 80 कंट्रीज उसके मेंबर बने हुए हैं. उसका क्या मतलब है कि हम अगर जहाँ जहाँ सौर ऊर्जा का पोटेंशियल है, मतलब कि प्राइमरीली इक्वेटर के आगे पीछे डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके हम प्रोजेक्ट्स को हम कैसे एक साथ लाएं ताकि एक टोटल जो ग्लोबल मार्केट हो वो और बड़ा हो, टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम हो और स्पीड ऑफ डिप्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े. ये भी एक ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक उदाहरण बन जाता है. तो आप राजनीतिक लाभ अपने देश में ले सकते हैं बिजली सड़क पानी देने में, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी दे सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को दिखाने के लिए, और आप और भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मल्टीलैटरल लेवल पे दे सकते हैं काफ़ी कंट्रीज को एक साथ जोड़कर.
तो आपने भारत और बांग्लादेश का जिक्र किया. भारत और खासतौर पे जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके लिए एक ये एक इतना अहम लम्हा है जिसमें वो विकास के रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसे विकास में जो स्वच्छ विकास है, जो जिसमें साफ ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है, इस रास्ते पर जाने में चुनौतियां क्या हैं और फिर उसके समाधान?
सबसे बड़ा चुनौती और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी एक ही है, इमेजिनेशन का, विजन का. ये विजन और इमेजिनेशन का एक कॉन्सिक्वेंस बनता है कि तब एक जो मैं कहता हूँ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बन जाता है कि अब ये इन्वेस्टर्स को, डेवलपर्स को, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स को पता चल गया है कि भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो अब क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम की तरफ जा रहा है. बांग्लादेश हो, नेपाल में हाइड्रोपावर ले लें, भूटान में हाइड्रोपावर ले लें, श्रीलंका में विंड पावर ले लें, आप कहीं पे भी देखिए अगर आपका विजन एक्सपेंसिव रहे तो काफ़ी चुनौतियां हट जाती हैं. लेकिन सिर्फ एक विजन रखना काफ़ी नहीं है. विजन विदाउट एक्शन इज ओनली अ ड्रीम. तो वो सपना ना रह जाए, वो यू नो रियलिटी बने. उसके लिए जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की मैंने बात किया, बिजनेस मॉडल्स का बात किया, वो भी है. एक और चीज़ है जो चुनौतियों को हटा सकता है और वो है हम किसके लिए और किसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ सौर ऊर्जा या वायु ऊर्जा को केवल एक बड़े इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें और सोचें कि सिर्फ इसमें अरबों का इन्वेस्टमेंट हो बस वो काफ़ी रहेगा, तो काफ़ी चैलेंजेस रह जाएंगे। अगर हम उसका हमारा एक आउटलुक बदल लें इस पर कि ये हम किसके सॉल्व कर रहे हैं, हम एक गरीब किसान का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके पास सिंचाई का पानी नहीं है, मैं उसको कैसे मॉडर्न एनर्जी से ऐसा एक वाटर सोलर इरिगेशन पंप से पानी निकालने का सोल्यूशन दूँ ताकि उसका खेती उत्पादन बढ़ जाए, मैं शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ाऊं जो बैटरीज के बेसिस पे बसेस चले या बैटरी स्वैपिंग पे बसेस चले, मैं स्लम इलाकों में या लो इनकम हाउसहोल्ड्स के घरों पे कैसे रूफटॉप सिस्टम्स लगाऊं ताकि उनके जो बिजली का बिल है वो मंथ टू मंथ घटते रहे। जब हम गरीब को अपना सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बना दें कि हम इसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो बड़ा जो इमेजिनेशन है और छोटे घरों के लिए और गरीब घरों के लिए जो सॉल्यूशंस हैं उन दोनों में एक ब्रिज बन जाता है, तो और वो छोटे छोटे सॉल्यूशंस का एक एग्रीगेट बन जाता है बड़े बड़े स्केल पे डिप्लॉयमेंट के लिए।